सोचिए जरा, प्राचीन मध्य पूर्व की एक गर्भवती महिला के बारे में।
हाँ,
उसके गर्भ के भीतर पल रहे जुड़वा बच्चे आपस में इतनी हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगता है।
बिल्कुल, ये कोई आम गर्भावस्था तो बिल्कुल नहीं थी।
एकदम, मतलब ये कोई आम शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये एक ऐसे पारिवारिक और खून के प्यासे बैर की शुरुआत थी जो आगे चलकर प्राचीन दुनिया को दो हिस्सों में बांटने वाला था
और दो ऐसे राष्ट्रों को जन्म देने वाला था जो सदियों तक लड़ते रहे।
सही कहा, और ये किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं है। तो आज हम जिस विषय का गहन विश्लेषण करने वाले हैं वो मानव इतिहास और परिवार की कड़वी राजनीति का एक बहुत ही प्रमाणिक दस्तावेज है।
जी,
हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज द्वारा उत्पत्ति की किताब मतलब जेनेसिस पर दिए गए अध्ययन पर आधारित है, विशेष रूप से सेक्शन 16 जहां अध्याय 25 से 27 तक की चर्चा है,
जहां आइजैक, जिसे हम इसहाक भी कहते हैं, उसके परिवार की परतें खोली गई हैं।
बिल्कुल, और हमारा मुख्य मिशन आज यही खोजना है कि कैसे एक ही परिवार के भीतर धोखा और पक्षपात पीढ़ियों तक चलते हैं और कैसे ईश्वर की योजना इन मानवीय कमियों के बावजूद पूरी होती है।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि देखिए, जब हम इस प्राचीन वृत्तांत को पढ़ते हैं ना, तो हमें कोई आदर्श या पवित्र परिवार नहीं मिलता।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि ऐसे इंसान मिलते हैं जो ईर्ष्या और स्वार्थ से भरे हुए हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक सर्वोच्च सत्ता इन तमाम इंसानी षड्यंत्रों के बीच से भी अपना रास्ता निकाल लेती है।
तो चलिए इन जुड़वा भाइयों मतलब जैकब और एसाव के उस भयानक संघर्ष तक पहुंचने से पहले हमें इस परिवार की जड़ों को खंगालना होगा।
हाँ, पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है।
मतलब ये कड़वाहट आई कहाँ से, और इसके लिए हमें उनके पिता आइजैक के जीवन को देखना होगा।
बिल्कुल,
जब मैं इन दस्तावेजों को पढ़ रही थी तो आइजैक मुझे अपने पिता अब्राहम का ही एक प्रतिरूप लगता है, एकदम कॉपी पेस्ट।
हाँ, यहाँ इब्रानी भाषा का एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसे टोलेडोथ कहा जाता है।
टोलेडोथ, इसका क्या मतलब है?
इसका अर्थ केवल वंशावली नहीं है, बल्कि ये इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। जेनेसिस में ऐसे 11 हिस्से हैं, और जब आइजैक का टोलेडोथ शुरू होता है तो स्पष्ट हो जाता है कि वो अपने पिता की विरासत को ही आगे बढ़ा रहा है।
मतलब जो वादे इब्राहिम से किए गए थे, जमीन के, संतान के, वो सब अब आइजैक पर आ गए।
बिल्कुल, वो सारे वादे आइजैक के कंधों पर आ गए थे। लेकिन विडम्बना देखिए, जिस तरह अब्राहम और सारा को संतान के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा था ना, ठीक वैसे ही परीक्षा से आइजैक और रिबका को भी गुजरना पड़ा।
बाप रे, 25 साल! और रिबका को कितना इंतजार करना पड़ा?
उन्हें 20 साल तक सूनेपन का सामना करना पड़ा, और जब आखिरकार बच्चे हुए तो दोनों ही पीढ़ियों में दो भाइयों के बीच भयंकर प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई।
हाँ, जैसे इब्राहिम के घर में इश्माइल और आइजैक के बीच तनाव था।
सही कहा, और अब आइजैक के घर में एसाव और जेकब के बीच वही कहानी दोहराई जाने वाली थी।
चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ एक ऐसी घटना है जो मुझे सच में हैरान कर देती है।
कौन सी?
मतलब ये दिखाता है कि कैसे हम अनजाने में अपने माता पिता की गलतियों को अपने भीतर बसा लेते हैं। जरार में जब एक भयानक अकाल पड़ता है,
हाँ, जरार का अकाल,
तो आइजैक अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक झूठ बोलता है। वो कहता है कि रिबका उसकी पत्नी नहीं, उसकी बहन है।
बिल्कुल वैसा ही झूठ जो अब्राहम ने वर्षों पहले बोला था।
एकदम, और फिर वहां का राजा अभिमेलेक, जो शायद फेरौन की तरह एक पदवी थी,
जी वो एक पदवी ही थी,
वो अपनी खिड़की से झांकता है और आइजैक और रिबका को एक दूसरे को दुलारते हुए देख लेता है। झूठ पकड़ा जाता है।
हाँ, वो दृश्य बहुत ही नाटकीय है।
तो मेरा एक तीखा सवाल है यहाँ, अगर अब्राहम को इस धोखे का अंजाम पता था तो आइजैक ने इतिहास से सबक क्यों नहीं लिया? मतलब क्या ये झूठ बोलना कोई पारिवारिक आदत बन गई थी?
मैं कहूंगा कि आपने बहुत सही बात पकड़ी है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक विरासत है। प्राचीन काल में अकाल सिर्फ भुखमरी नहीं था, बल्कि अस्तित्व का संकट था।
मतलब कोई भी किसी को मार सकता था।
बिल्कुल, ऐसे तनाव में इंसान का दिमाग अक्सर उसी रक्षा तंत्र की ओर भागता है जो उसने अपने बड़ों को करते देखा हो। आइजैक ने वही किया। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस नैतिक विफलता के बावजूद आइजैक का सर्वनाश नहीं होता, बल्कि उसे उसी साल 100 गुना फसल का आशीर्वाद मिलता है।
अरे वाह, 100 गुना!
हाँ, और बीरशेबा में, जिसका मतलब शपथ का कुआं या सात का कुआं है, वहाँ अभिमेलेक के साथ एक शांति समझौता भी होता है।
तो मतलब ईश्वर का वादा आइजैक की योग्यता पर निर्भर नहीं कर रहा था?
बिल्कुल नहीं, वो वादा अपने आप में स्वतंत्र था।
ये बहुत गहरी बात है, लेकिन ये जो अस्थिरता थी ये आइज़ैक तक नहीं रुकी, ये पीढ़ियों से चली आ रही अस्थिरता अब अगली पीढ़ी के जन्म में बदल जाती है।
हाँ, और ये संघर्ष दुनिया में आने से पहले ही माँ के गर्भ में शुरू हो जाता है।
मतलब रिबेका के गर्भ में जुड़वा बच्चे आपस में इतना लड़ रहे थे कि वो परेशान होकर ईश्वर से पूछती है कि ये क्या हो रहा है,
और जो भविष्यवाणी उसे मिलती है वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। ईश्वर कहते हैं, तुम्हारे गर्भ में दो राष्ट्र हैं और बड़ा छोटे की सेवा करेगा।
ये तो उस समय के परंपरा के बिल्कुल उलट था ना, जहाँ बड़े बेटे को सब कुछ मिलता था।
बिल्कुल उलट। रोमियो के 9वें अध्याय में भी इसका जिक्र है कि ये दर्शाता है कि ईश्वर की योजना इंसान की परंपरा या योग्यता की मोहताज नहीं है।
सही कहा। और फिर उनका जन्म होता है, पहला बेटा एसाव जो लाल और बालों वाला था,
जो बाद में एदोम कहलाया।
हाँ, और दूसरा बेटा जैकब जो पैदा होते ही एसाव की एड़ी पकड़े हुए था। जैकब के नाम का अर्थ ही हिब्रू में एड़ी पकड़ने वाला या धोखेबाज है ना।
हाँ, एड़ी पकड़ने वाला या छल करने वाला। और होशे 12 के अनुसार जैकब ने गर्भ में भाई से संघर्ष किया, जवानी में इंसानों से, और बेथेल में ईश्वर या स्वर्गदूत के साथ भी संघर्ष किया।
बापरे, उसका तो पूरा जीवन ही संघर्ष था।
जहाँ वो रोते हुए कृपा की भीख मांगता है, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईश्वर की संप्रभुता कैसे इंसानी कमजोरियों के साथ काम करती है।
पर एक मिनट, मैं यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी।
जी पूछिए।
अगर ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया था कि छोटा भाई बड़े पर राज करेगा, तो क्या आगे चलकर जैकब और रिबका ने जो भी धोखेबाजी की वो जायज नहीं हो गई?
ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं।
मतलब क्या वो सिर्फ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे थे?
देखिए, लक्ष्य पहले से तय था, ये सच है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने खुद चुना। ईश्वर अनैतिक तरीकों को सहमति नहीं देता।
तो मतलब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी?
बिल्कुल भारी कीमत चुकानी पड़ी। रिबका को अपने चहेते बेटे को दूर भेजना पड़ा, और जैकब को दशकों तक एक भगोड़े की तरह निर्वासन में जीना पड़ा।
तो वो स्क्रिप्टेड नहीं था, उन्होंने अपनी असुरक्षा में गलत फैसले लिए।
हाँ, वो स्वतंत्र इंसान थे।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गर्भ में शुरू हुई वो लड़ाई अब लड़कपन में एक अजीब मोड़ ले लेती है।
हाँ, सूप वाला अध्याय।
बिल्कुल, मतलब दो भाइयों के अलग अलग शौक एक बड़े पारिवारिक सौदे का कारण बन जाते हैं,
और उसमें माता पिता के पक्षपात का बहुत बड़ा हाथ था।
एकदम। आइज़ैक एसाव से प्यार करता था क्योंकि वो एक कुशल शिकारी था, और आइज़ैक को जंगली मांस पसंद था।
और दूसरी तरफ रिबेका जैकब से प्यार करती थी, जो तंबू में रहता था।
तो एक दिन एसाव शिकार से बहुत भूखा प्यासा लौटता है, और जैकब वहाँ क्या कर रहा था? वो एक लाल सूप बना रहा था।
लाल रंग का गाढ़ा सूप।
हाँ, और एसाव वो सूप मांगता है, और जैकब इसके बदले में उसका जन्म सिद्ध अधिकार मांग लेता है।
ये कोई मामूली मांग नहीं थी।
मैं भी यही सोच रही थी, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान आज शाम की भूख मिटाने के लिए अपनी पूरी उम्र की रिटायरमेंट सेविंग्स बेच दे।
यह एक बहुत ही सटीक तुलनी है।
मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में भूख से मरने वाला था, या फिर जैकब ने बस एक ओवर ड्रामेटिक इंसान की मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाया?
देखिए, मैं समझाता हूँ। ऐसा पूरी तरह से दोषी था, क्योंकि उसने एक पवित्र और दीर्घकालिक जिम्मेदारी को शारीरिक इच्छा के आगे तुच्छ समझा।
तो ये जन्मसिद्ध अधिकार असल में था क्या?
इसका मतलब था विरासत का दोगुना हिस्सा। ड्यूटरोनॉमी 21 और यशाया 61 में इसका महत्व बताया गया है। ये परिवार का आध्यात्मिक नेतृत्व था,
और उसने बस एक कटोरी सूप के लिए वो सब दे दिया।
हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि एसाव ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को तुच्छ जाना, उसने लापरवाही दिखाई।
बापरे, लेकिन एसाव ने अपना कानूनी अधिकार तो खो दिया था, लेकिन पिता का आध्यात्मिक आशीर्वाद अभी भी बाकी था।
बिल्कुल, और उसी आशीर्वाद के लिए सबसे बड़ा धोखा रचा गया।
हाँ, और ये किसी डेली सूप की तरह लगता है। मतलब इतने धोखेबाज लोग एक पवित्र राष्ट्र की नींव कैसे बन सकते हैं?
ये सच में चौंकाने वाला है। आइज़ैक अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखें कमजोर थीं।
तो वो एसाव को बुलाता है।
हाँ, वो एसाव को शिकार का मांस लाने और आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है।
लेकिन रिबका ये सुन लेती है, और वो तुरंत जैकब के साथ साजिश रचती है।
जैकब डरता है, वो कहता है कि अगर पिता ने उसे पहचान लिया तो उसे आशीर्वाद की जगह श्राप मिलेगा।
और रिबका क्या कहती है? वो कहती है कि वो श्राप मुझ पर पड़े। मतलब एक माँ का ऐसा जुनून।
उसने ईश्वर का इंतजार करने के बजाय चालाकी की।
हाँ, और फिर जो वो करते हैं, आह वो तो हद ही है। बकरियों की खाल जैकब के हाथों और गर्दन पर बांधी जाती है
ताकि वो छूने पर एसाफ की तरह बालों वाला लगे,
और फिर वो अपने अंधे पिता के पास जाता है और एक नहीं लगातार 3 झूठ बोलता है।
जी, पहला झूठ कि मैं एसाव हूँ,
और दूसरा झूठ जो मुझे सबसे भयानक लगा, जब आइजैक पूछता है कि इतनी जल्दी शिकार कैसे मिल गया, तो जैकब कहता है तुम्हारे ईश्वर ने मुझे जल्दी शिकार दिला दिया।
हाँ, उसने अपने झूठ में ईश्वर का नाम घसीट लिया।
मतलब बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। और तीसरा झूठ, जब आइजैक पूछता है कि क्या तुम सचमुच एसाव हो, तो वो कहता है हाँ मैं हूँ।
और अंततः आइजैक उसे समृद्धि, भरपूर अनाज और भाइयों पर राज करने का आशीर्वाद दे देता है।
ये तो पूरा एक बड़ा क्राइम सीन लग रहा है।
अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो इस पूरे ड्रामे में चारों लोग समान रूप से जिम्मेदार हैं।
चारों कैसे?
देखिए, आइजैक जिसने भविष्यवाणी को अनदेखा करके एक बेटे का पक्ष लिया, रिबका जिसने जल्दबाजी में चालाकी की, जेकब जिसने बेशर्मी से झूठ बोला,
और एसाव। हाँ, वो तो शिकार करने गया था ना।
हाँ, लेकिन एसाव ने भी बड़ी गलती की थी। उसने 40 साल की उम्र में हित्ती औरतों से शादी की थी।
अच्छा, हित्ती औरतों से, इसका क्या मतलब है?
ये बहुदेववाद का खतरा था। इससे आइजैक और रिबका बहुत दुखी थे। रिबका का ये गुस्सा भी इस धोखे का एक बड़ा कारण था। एसाव ने लापरवाही दिखाई थी, अपना अधिकार बेचकर भी और ये शादी करके भी।
समझ गई, मतलब कोई भी दूध का धुला नहीं था।
बिल्कुल नहीं।
तो इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें, तो ये कहानी साफ दिखाती है कि पारिवारिक पक्षपात, जल्दबाजी और स्वार्थ किसी भी परिवार को तोड़ सकते हैं।
हाँ, और इसके बावजूद ईश्वर की योजना इन मानवीय कमियों के बीच भी अपना रास्ता खोज ही लेती है।
तो इन सब का आखिर हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब सुनने वालों को ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितनी बार एसाव की तरह तुरंत मिलने वाली खुशी के लिए अपने लंबे भविष्य का सौदा कर लेते हैं।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं।
बिल्कुल। या फिर कितनी बार हम जैकब की तरह चीजों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए गलत रास्ते चुनते हैं। हमारे फैसले सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते, वो पीढ़ियों तक जाते हैं।
एकदम सही। और इस चर्चा का अंत मैं एक बहुत ही गहरे पहलू के साथ करना चाहूंगा।
जी बताइए।
जब एसाव को पता चलता है कि धोखा हुआ है, तो जरा सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी।
वो तो टूट गया होगा।
वो जोर जोर से रोता है और पिता से बचे हुए आशीर्वाद की भीख मांगता है।
और आइजैक उसे क्या देता है?
आइजैक उसे एक एंटी ब्लेसिंग देता है। वो कहता है कि वो धरती की समृद्धि से दूर रहेगा और हमेशा तलवार के बल पर जिएगा।
बापरे, एक एंटी ब्लेसिंग।
कल्पना कीजिए उस मनोवैज्ञानिक चोट की, जब एक इंसान को उसके ही पिता के अंतिम आशीर्वाद से उसके सगे भाई द्वारा वंचित कर दिया जाए, तो वो गुस्सा कैसा रूप लेगा?
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
क्या यही वो नींव नहीं थी जिसने सदियों बाद इसराइल और एदोम नाम के दो राष्ट्रों के बीच कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी और युद्ध को जन्म दिया?
मतलब ये एक ऐसा पारिवारिक घाव था जिसका खून सदियों तक बहता रहा। सच में ये बहुत गहरी बात है सोचने के लिए। एक झूठ जिसने पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया।